सतभामा जी का भी ऐसा देखा जाता है, मान के द्वारा क्रोध करते हैं और कोप भाव में बैठ जाती है, ऐसा साधारण रूप में देखा जाता है। किंतु आज इनका तो हम दूसरा ही रूप देख रहे हैं, आज ये प्रकट रूप में अपने पति के प्रति क्रोध करके और उनके संगियों को पीट रही हैं, गाली दे रही हैं, ऐसा तो मान कभी तक त्रिभुवन में नहीं देखा गया। ये कैसा मान है? प्रभु कहे कह ब्रजेर मानेर प्रकार, स्वरूप कहे गोपी मान नदी सतधार। गोपियों का मान कैसा है इसकी हजार उदाहरण। तो यहाँ पर गोपियों का कह रहे हैं, किंतु लक्ष्मी जी को कैसे ये मान हुआ, ये प्रसंग का विषय है। गोपियों का मान का इनसे श्रेष्ठ बतलाया गया, इसीलिए उन्होंने बतलाया। मान दो प्रकार का होता है गोपियों का, हेतुक और सहेतुक। मान दो प्रकार और उसमें भी मान में गोपियों के बहुत से प्रकार दिखाए गए, धीरा अधीरा, धीरा और धीरा। उसका कुछ लक्षण ये बतलाया, धीरा पति के प्रति मान करने पर यदि पति आ रहे हैं तो उठ करके खड़ी हो जाएंगी और कुछ बोलेंगी नहीं, और यदि वो कुछ कहते हैं तो साधारण रूप में कुछ उपेक्षित कुछ बातों को कह करके बस इतना ही। मुग्धा एक है, वो रोने लग जाए और कुछ नहीं कहेंगे, प्रत्युत्तर नहीं करेंगे। और धीरा धीरा क्या करेंगे, धीर भी है अधीर है, वो कुछ धीर है, मधुर बातें तो कहेंगी किंतु कैसे कहेंगी, उल्टा उलाट करके कहेंगी, उल्टे पुल्टे के रूप में। हृदय को मुखे मधुर वचन, हृदय में तो कोप है और मुख से मधुर वचन। और यहाँ लक्ष्मी जी क्या कहा है, मधुर वचन भी नहीं है और ऊपर से कोपिया और प्रखर बातें भी कर रहे हैं। ये ब्रज से कुछ दूसरे प्रकार, किंतु ब्रज का मान ये होता है उसमें धीरा धीरा का, भीतर से हृदय से को और मुख में मधुर वचन। प्रिय आलिंगते तबे करे आलिंगन, सरल व्यवहार करे माने रोषण। अधीरा निष्ठुर वाक्य कहती है और करण भर्षण। इस प्रकार से सबका ये वर्णन किया है। श्रीवास जी उनके भावों को देख करके हंस रहे हैं, आज हमारी लक्ष्मी जी की विजय हुई। जिनके पास में स्वर्ण के आभूषण है, जिनके फूल की मालाओं से अपना श्रृंगार करती हैं, हमारी लक्ष्मी जी को यह सहन नहीं हुआ कि कृष्ण उनके साथ में जाएं, इसलिए आकर के उनको तारण भर्षण करती हैं हमारी लक्ष्मी जी। देखो लक्ष्मी जी का यह उनको शासन करना और उनको मारना पीटना बड़ा अच्छा लगा, हमारी लक्ष्मी जी का कितना ऐश्वर्य। आज उनको मार पीट रही हैं, उनसे दंड ले रही हैं, आज हमारी लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य तो देखो, वैकुंठाधिपति नारायण की लक्ष्मी। और तुम्हारी गोपियों के पास में कुछ नहीं है फूलों के अतिरिक्त। सर्व दामोदर ने इसका उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया वहाँ के फूल कैसे हैं, श्रृंगार वृंदावन के पुष्प कैसे हैं, वैकुंठ के स्वर्ण और हीरे और चिंतामणियों से भी वहाँ के एक एक गाय कामधेनु हैं जो समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करती हैं। वहाँ पर श्रृंगार तरव, वहाँ के जो फूल होते हैं चिंता वो पारित वो पुष्प जो है किसके, कल्प वृक्ष, उनके फूलों का प्रयोग गोपियाँ किसी काम में नहीं करती, वो क्या करती हैं, श्रृंगार के लिए पुष्पों को धारण करती। चिंतामणि उनके पैर जगों में नुपुरों का काम करते हैं और ये आपके गले में शोभा देते हैं लक्ष्मी जी के, और वहाँ गोपियों की चरणों की शोभा की सेवा करते हैं, वो भी उनको नहीं पहनती है फूलों के ही पहनती हैं। इसलिए वृंदावन की कैसी महिमा है, आप नहीं जानते हैं। महाप्रभु जी दोनों का रंग और तरंग देख रहे हैं। अंत में स्वरूप दामोदर की बातें ही श्रेष्ठ साबित हुई, महाप्रभु जी उसे प्रभावित हुए और फिर उसके संबंध में वर्णन किया। ये वृंदावन की माधुरी सहज माधुरी है, वहां पर पेड़ है कल्प वृक्ष, गाय है कामधेनु, सहज चलना ही नाट्य है, बोलना ही
गान
है,
पानी ही अमृत
है, त्वयम अमृतम मैंने दूध ही अमृत है, इस तरह से उसका वर्णन किया। हम लोग समय अनुसार उनका वर्णन करेंगे। आज यहाँ
हम लोग रथ यात्रा प्रसंग में प्रताप रुद्र जी के कृपा के ऊपर में कृपा महाप्रभु जी की हुई, वहाँ तक प्रसंग हमने पाठ किया। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ गए थे
हीरा पंचमी।
कल हीरा पंचमी के संबंध में बताया गया, लक्ष्मी जी खोज रही हैं कृष्ण को और वो खोजने में उनको ऐसा मान हुआ कि रथ को तोड़ दिया, सब लोगों को बांध दिया, इतना क्रोध ये क्यों हुआ और लक्ष्मी जी को साथ कृष्ण क्यों नहीं ले गए। तो इसका उत्तर दिया कि वृंदावन की लीला में लक्ष्मी जी का अधिकार नहीं है। तो अधिकार न होने का कारण क्या है, वो अपने को ब्राह्मणी समझती है, वैकुंठाधिपति नारायण की प्रिया समझती है और ऐश्वर्य उनमें भाव है। जब तक कोई गोप गोपी नहीं होगा तब तक ब्रज लीला में किसी का अधिकार नहीं, चाहे पुरुष रूप में चाहे ब्रज का भाव होना चाहिए, गोप गोपियों का भाव। इसलिए अर्जुन कृष्ण के सखा थे किंतु उनको ब्रज का भाव नहीं, क्योंकि वो द्वारकाधीश से संबंधित और द्वारकाधीश के वो सखा उनमें ऐश्वर्य भाव प्रधान होता है, क्षत्रिय अभिमान उनमें है। तो ऐसे लक्ष्मी जी का ब्राह्मणी अभिमान, ब्रह्म इत्यादि की उपास्या है, सबको वर देती हैं किंतु ब्रज का भाव उनमें नहीं है। मैं गोपी होकर के ब्रज में दूसरे गोपों के साथ मेरी शादी होगी और तब मैं कृष्ण की उपासना करूंगी, ये उनके लिए संभव करती हूँ, इसलिए उनको ब्रज लीला में अधिकार नहीं है, ये प्रधान बात। उसी तरह से कोई ब्रज में भी जन्म लेकर के द्वारका के प्रति, द्वारकाधीश के प्रति, रुक्मिणी सप्तभामा के सेवा के प्रति जिसको यदि कुछ थोड़ी सी भी आदर या उसके प्रति आकृष्टि है तो उनको ब्रज भाव की प्राप्ति। यहाँ तक कि राधा कृष्ण की सेवा करने पर भी उनको ब्रज की प्राप्ति नहीं, राधा कृष्ण की सेवा भी करते हैं किंतु द्वारकाधीश के प्रति, द्वारका के प्रति, सप्तभामा के प्रति आदर की यदि दृष्टि है, दोनों एक साथ में चीज नहीं, इसलिए उनके लिए क्या होगा, जो राधा कृष्ण का भजन करते हैं तो उनको क्या गति होगी। किंतु उधर भी कुछ रुचि है, यदि रुचि है तब तो द्वारका में उनका होगा, उनकी दासी बन करके या और जो राधा कृष्ण की सेवा करते हैं किंतु वैधि मार्ग से करते हैं उनको क्या होगा,
गोलोक
उसे द्वारका से भी नीचे गोलोक में स्वकीय भाव में उनकी सेवा। और जिनको राधा कृष्ण में प्रीति है भजन करते हैं और ब्रज के भावों के अनुसार में उनके अधीन होकर के काम करते हैं भजन करते हैं तो उनको ब्रज भाव की प्राप्ति। सखाओं के अनुगत होने पर सखाओ जैसा। तो सोदा नंद जी के अनुगत्य में भजन करने पर वात्सल्य भाव, और जो लोग इन सबको छोड़ करके गोपियों के शुद्ध अनुगत्य में भजन करते हैं, तो जिस गोपी के अधीन अनुगत होकर के भजन करेंगे ठीक वैसे ही उनको तो इसीलिए श्रुतियों के लिए देखा जाता है, दंडकारण्य के महर्षियों के लिए देखा जाता है। और एक तो जन्म में ये सब सिद्धि नहीं होती, कल्प लग गया उनके लिए, श्रुतियों के लिए और दंडकारण्य वासियों के लिए। तो हम लोगों की क्या दशा है और किस कब साधन होगा, कैसे साधन। यदि अंततः लोभ भी थोड़ा सा हो जाता है तो बीज हो गया। अब इस बीज को अंकुरित करने के लिए रूप और रघुनाथ की तरह हमें साधन भजन करते 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 10-20 हो सकता है कि जन्म जाएंगे। और जब फिर धीरे 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 वैसे ही वैराग्य, वैसे ही त्याग और वैसे ही निष्ठा होगी, भजन में निष्ठा, फिर भजनीय में निष्ठा, फिर धीरे धीरे साधारण किए नहीं। रथ यात्रा का प्रसंग इसी ऐसे व्यक्तियों के लिए उपकार के लिए ही है। कृष्णदास का प्रजाज गोस्वामी ने चैतन्य चरतम सभी उसी को रागानु का भजन के उद्देश्य करके ये लिखा है। इसमें वैदिक भक्ति की बात नहीं है, प्रारंभ से यहाँ पर है रास रसारंभी बंसी बट तटस्थित कर्षण वेणु स्वनई गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु न। ये वैदिक भक्ति का है प्रसंग ना क्या है, इसलिए प्रारंभ से हम चलते हैं। उनका एक उद्देश्य, उद्देश्य दे दिया यही गोपी गोपीनाथ, और उसी को प्रसंग अनुसार में हम प्रारंभ से कैसे चल सकते हैं। धीरे 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 भक्तों का चरित्र दिया, तरह तरह के उपाख्यान दिए, भक्त स्वामी सिंधु का वो प्रसंग लाए वैदिक भक्ति इत्यादि का। किंतु उद्देश्य सब समय उनका, किसी भी प्रसंग में देखो, राय रामानंद के प्रसंग में देखो, अंत में कहाँ लेकर के जाते हैं, आरंभ किया वर्णाश्रम धर्म से, वैदिक भक्ति से भी नीचे। वर्णाश्रम धर्म जो है ये वैदिक भक्ति के अंतर्गत नहीं, निम्न स्थिति। और यहाँ से उठा करके तब फिर ले गए इधर इधर आ गए, हमारी बात को सुनो बच्चे और समझना, मन देकर के सुन। अब तुम सब पीछे में रूप गोस्वामी का उपाख्यान दो, लिया है कोटि कोटि जगत में जीव हैं, चार प्रकार के जीव हैं, उद्भिज और कौन कौन से भी बताया है, जड़ हैं, जंगम हैं, स्थावर जंगम इत्यादि, और उसमें भी ये सब बताया है। उसमें से श्रेष्ठ पशु, उनसे भी श्रेष्ठ धीरे धीरे मनुष्य हो गया है। मनुष्य जाति अत्यंत दुर्लभ है इस जगत में, बहुत कम है, कम कितना कितना और अक्षर एक ब्रह्मांड में, और लाखों ब्रह्मांड भरे पड़े। उसमें से भगवत भक्ति संपन्न जीव बहुत दुर्लभ, कम है, बहुत इन शुद्ध रूप। उन लोगों में से नारायण प्राणायण बहुत फल, नारायण पारायणों में से बहुत कम है जो कृष्ण पारायण, कृष्ण पारायण में भी एकांती कृष्ण पारायण बहुत दुर्लभ। उनमें से भी कृष्ण में साधारण रूप में ये तीनों को मिला करके, ब्रज द्वारका और मथुरा और वो लोग सब मिला करके ऐसे भक्त लोग हैं, वो भी बहुत। उनमें से शुद्ध ब्रज के भाव को ग्रहण करने वाले अत्यंत दुर्लभ दुर्लभता है। उन लोगों में से दास्य का भाव रखने वाले और कम, उन लोगों में से भी खूब कम है जो सत्य वाले, उनसे भी बहुत कम है बिरले वाले जो पहुंच गए पास। उन लोगों में से कोई एक बिरले हैं जो वहां पर पहुंचे। अंत में वो कैसे होगा, गोपी अनुगत बिना
भजन नहीं पाए, भजन नहीं।
इसलिए
इसको अंत में उठा ले, सनातन गोस्वामी का उपाख्यान ले रहे, एकदम प्रारंभ से आरंभ किया, जब स्वरूप यहाँ से आरंभ किया और अंत में कहाँ ले गए, पहले ले गए फिर संबंध ज्ञान, कृष्ण का तत्व, जीव का तत्व, माया का तत्व, संसार का तत्व, ये सब मिला है बतलाया,
फिर ऐश्वर्य माधुर्य
ये सब कुछ ले आए, इसके बाद में ले आए ये संबंध ज्ञान, ये सब कृष्ण के संबंध में, नारायण के संबंध में, 24 प्रकार के
अवतार तो
अवतार और काय विभूत आदि के संबंध में बतलाए और अंत में बतलाए इन सबसे कृष्ण का वैशिष्ट्य, कृष्ण है अंशी और ये है कृष्ण है अवतारी और बाकी सब हैं
अवतार,
इसलिए कृष्ण ही अद्वै ज्ञान पर तत्व, इनसे बढ़कर के और कुछ तत्व। अच्छा, कृष्ण का भजन भी कैसे होता है, कितने प्रकार के भक्त कैसे करते हैं, बृहद भगवतामृत इत्यादि में दिखला है, इसमें भी दिखला है और अंत में गोपियों के भाव को सर्वश्रेष्ठ करते हैं वहाँ पर, और उनका कैसे भजन होता है, कैसे रगान का भजन होता है, वहाँ पर भी अंत में रथ यात्रा का प्रसंग आरंभ किया। रथ यात्रा में बड़ा कौतूहल है, रथ जाएगा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा 3 रथ बने हैं और उसमें कैसे चढ़ा रहे हैं जगन्नाथ जी को, ये सब देख लाना इनका प्रधान तत्व तो नहीं है, गुंडीचा माध्यम से आरंभ किया और रथ यात्रा में लाखों लोग उसको रस्सी पकड़ करके खींच करके चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है ये सब प्रसंग, किंतु गूढ़ रहस्य उसमें क्या है, उसमें गूढ़ रहस्य क्या है, गोपियाँ कृष्ण को अपने हृदय रूपी रथ में रख करके ब्रज में ला रहे, ये उसका गूढ़ रहस्य है, बिना गोपियों के कृष्ण उस रथ में चढ़ करके ब्रज में आएंगे ये सब, कोई भी सखा रथ को खींचने आया कि नहीं ये देखो, कोई भी मैया वहाँ पर बासल्य वाले उस रथ को मैं हाथ में रस्सी पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कौन पकड़ा, महाप्रभु जी देख रहे हैं क्या, बस गोपियाँ रथ को खींच रही हैं और कोई खींच ही नहीं रहा है, क्योंकि रथ भी गोपियों के हृदय का है, इसको कौन हाथ,
पुरुष बने हुए हैं,
पुरुष हो चाहे जैसे भी हो, महाप्रभु जी देख रहे हैं, महाप्रभु जी की भावना देखो जो उसमें क्या है, इसलिए रथ यात्रा प्रसंग में भी भजी भक्ति का एक धरातल में बस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उसको दिया, किंतु बिना इसके होगा नहीं,
माधुरी जी कादम्बिनी में कहा है कि भजी भक्ति का जाति और प्रमाण के भेद से भाव और रागानुग भक्ति का जाति और प्रमाण के भेद से भाव,
मैंने भजी भक्ति रागानुगा में भी भजी भक्ति है रहेगा किंतु भाव से, बिना भजी भक्ति के रागानुगा होगा नहीं, संभव नहीं, किंतु उसका उद्देश्य होना चाहिए ऐसा। आप हम लोग कुरुक्षेत्र के प्रसंग पर चल रहे हैं, मैंने जहाँ भी जो प्रसंग है, केवल चैतन्य चरितामृत नहीं, हमारे गोसाइयों का कोई भी ग्रंथ लो, जी गोस्वामी का संदर्भ तत्व संदर्भ में उन्होंने क्या दिखलाया, ये सब तत्वों का विश्लेषण, तत्वों का विश्लेषण करके फिर अंत में ले गए द्वितीय द्वितीय में परमात्मा भगवत संदर्भ में, ब्रह्म जो ज्योति में जो लोग मिलते हैं ये क्या चीज है और जीव के साथ में उसका क्या संबंध है, फिर परमात्मा के साथ में जीव का क्या संबंध है, फिर कृष्ण के साथ में जीव का क्या संबंध है, फिर भक्ति किसको कहते हैं और उसमें भी कृष्ण भक्ति किसको कहते हैं और उसमें भक्ति का प्रकार, फिर इसके बाद में ले आए वही प्रति संदर्भ, प्रति संदर्भ उन्होंने क्या दिया, दास सख्य बासल्य का देते हुए अंत में कैसे होता है, गोपियों का भाव दिया बस, खूब ध्यान से सुनो, यदि आंख बंद कर देगा तो तुम्हारा हृदय बंद हो जाएगा तो एक अक्षर भी सुनाई नहीं पड़ेगा, तन करके बैठो सुनो अच्छी तरह से मन से तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए अब रथ का प्रसंग, कल तो खेचा रहा रस्सी टूट गई थी और रस्सी टूट गई, महाप्रभु जी ने कहा कि देखो भाई रस्सी पुरानी हो गई है, बासु को गुणराज खान को कहा ऐसी मोटी रस्सी नहीं जाना, हर साल नहीं आनी,
है तो पुराने टोटना से हजारों आदमियों के मरने की संभावना है। हजारों आदमी पकड़ करके खींच रहे हैं और रस्सी जब टूट गई तब क्या हुआ? इसलिए तो नई रस्सी प्रत्येक बार
इतना भारी रस्सी कैसे लाएंगे? गाड़ी तो
चाहिए। कैसे उस समय की व्यवस्था थी जो ले आए? प्रति वर्ष लाते थे, जब तक वो थे महाप्रभु थे तब तक वो आता था। इस तरह से फिर महाप्रभु जी रथ को खींच रहे हैं, खींचवा रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं। करेंगे से महाप्रभु जी ये कर रहे हैं, उनकी भावना क्या है? तो वो उसको बतला रहे हैं। श्लोक तो पढ़ रहे हैं, जब कौमार है और कहते ये श्लोक हमने पहले व्याख्यान हुआ, हमने भी थोड़े से संक्षेप में इसका अर्थ बताया है। पूर्वी जैसे कुरुक्षेत्र सब गोपी गांव तब उधर ये गोपी गांव रथ यात्रा प्रसंग में और कोई भी रथ में जो खींच रहा है कोई भी पुरुष नहीं खींच रहा है, सब गोपियां खींच रहे हैं। पूर्वी जैसे कुरुक्षेत्र सब गोपी गांव कृष्ण दर्शन पाइया आनंदित मन, नंद बाबा का प्रसंग नहीं लाया, सखाओं का गए थे कि नहीं गए थे? सभी लोग गए हैं, बलदेव जी गए हैं, सुभद्रा और सब लोग गए हैं ब्रज के सभी लोग। किंतु कृष्ण दर्शन पाइया आनंदित मन कौन गोपी है? और को आनंद है ना, किंतु विशेष किसको आनंद है? इन गोपियों को ही सबसे विशेष आनंद, जिसके हृदय में जितना ही अधिक प्रेम होगा उसी को ही आनंद, जिसके हृदय में जितनी अधिक श्रद्धा होगी ये उसको उतना ही अच्छा सुनने में लगेगा, श्रवण भी कीर्तन भी सभी। जिसके हृदय में प्रेम अथवा माने प्रारंभिक स्थिति में श्रद्धा नहीं है वो लोग प्रश्न करेंगे, भाई ये जो नगर संकीर्तन हम लोग कर रहे हैं इससे क्या लाभ है? बेकार का फालतू, इतना परिश्रम करने की हमें क्या जरूरत है? दस मिनट बोलेंगे इधर उधर बैठ करके कीर्तन करेंगे खूब मन से, उधर उधर बोलने की क्या जरूरत है? ना कोई सुनता है ना कुछ, उसे क्या लाभ? तो ये महाप्रभु जी से पूछो, महाप्रभु जी से पूछो, भक्ति विनोद ठाकुर जी से पूछो, अपने गोसाई लोगों से पूछो, जब आया भाई आपने क्यों किया? यदि समझ में नहीं आता है तब प्रश्न मत करो, उन्होंने किया है इसलिए हम करें, पहली तो बात ये होना चाहिए ना। इसको कहते हैं अनुभव, जो समझ में नहीं आती है तो महाजने जैन गत और इसके करते करते मानने, ऐसा करने से क्या होगा थोड़ी देर के बाद में वो समझ में आ जाए, और पहले से ही बाई काट कर देंगे तो वो समझ में नहीं आए। महाप्रभु को क्या करनी पड़ी थी कि सात दलों में विभक्त करा कर भी अपने भक्तों के साथ में सारा दिन धूप में और वर्षा में खड़े होकर के सवेरे से शाम तक कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? भक्ति विनोद ठाकुर को गांव गांव में स्थापित करके वो नाम हर, और ये सब क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी प्रभुपाद जी को? छोटे छोटे तुम लोगों से भी छोटे छोटे ब्रह्मचारी सबको पढ़े लिखे करके गुरु महाराज जी जैसे लोगों को प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों बक्सा भिक्षा दे दिया? एक एक पैसा दो दो पैसा भिक्षा करने स्कूल भिक्षा की तरफ में मत क्यों किया? वो लोग भविष्य द्रष्टा है और सर्वज्ञ है, जीव का कल्याण कैसे होगा इसी जैसा। हरिदास ठाकुर महाप्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभो ये जो लोग हैं जिनको एकदम श्रद्धालु नहीं है, कुछ श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, भगवान तगवान कुछ नहीं मानते, उनका कैसे कल्याण होगा? विशेष करके जो इसके घोर विरोधी हैं, ऐसे बहुत से धर्म वाले हैं जो इसके घोर विरोधी हैं। हम लोग मायापुर में जब जाते थे ना नगर संकीर्तन, वो 16 कोस परिक्रमा एक सेकंड के लिए बंद नहीं होती, हमको तो याद है मैं 7 दिन की कितनी दिन परिक्रमा हुई, तो मैं 7 दिन प्रारंभ से लेकर के शाम तक मैं मूल गायक के रूप में फिर विक्रम महाराज जी और सब पता है आपका गला खराब नहीं होता है, जैसे टूटा फूटा गला किंतु उसी से दिन भर करता रहता, गला भी खराब नहीं होता। तो उसमें देखता था जहाँ जहाँ कोई मस्जिद है ना, मस्जिद जहाँ जहाँ है वहाँ पर सब बंद कर देते थे। क्यों?
आज के जैसे रास्ते में निकलने में
अब तो अधिक कम है, पहले बंगाल में प्रोसेशन लेकर के चलना बड़ा भारी मुश्किल था, जहाँ यदि हो जाएगा ना तो बस एकदम बंद कर दो, बंद करके बंद करो वही आवाज देने लगते, नमाज हो रहा है। आगे बढ़ ही नहीं पाता तब फिर बंद करके लोग सब चलते, अब तो बंद नहीं, अब तो खूब आंदा
मुझे बजा के जुड़ होते हैं।
तो ऐसे लोग जो घोर विरोध करते हैं इसका नहीं करते हैं, यहाँ तक कि और तो बात क्या, गुरु जी के साथ में हम लोग मंदिरों में वृंदावन में हम लोग गए तो वहाँ कौन मंदिर में हमको याद नहीं, बिहारी जी में, राधा बल्लभ जी में, और यहाँ के मदन मोहन जी मथुरा में जमुना के किनारे मदन मोहन का मंदिर, उनमें खोल मृदंग बजाते हुए कीर्तन करते हुए घुसने नहीं दिया, तो गुरु जी ने कहा कि यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं, इसलिए बिहारी जी के मंदिर में फिर गुरु जी कभी नहीं गए। वो कीर्तन कहते हैं कि इसमें चमड़ा है, मृदंग में चमड़ा है, तो गुरु जी ने कहा यह ये शंख बजाने वाला उसमें तो हार है, ये क्यों रखता है, ये क्यों बजाता है,
जो लोग तो उन लोगों में चमड़ा है, चमड़ा
तो तुम रहता तुम में। तो इस तरह से कह रहे हैं पशु पक्षी कीट पतंग है जो बोलते ना पा रहे, जो बोल नहीं सकते हैं सुन सकते हैं,
सुन ले कृष्ण नाम तारा सब तो,
इसलिए ऊंचे संकीर्तन राते करीला प्रचार स्थिर चौर जीवर खंडाई दर्शन, चैतन्य महाप्रभु अवतारे बहे प्रेमामित्र बन्ने
सब जीव प्रेम
सब जीव प्रेम भाषे पृथ्वी है अर्थन, इसीलिए जो बोल नहीं सकते हैं सुन नहीं सकते हैं जो विरोध करते हैं जिनको थोड़ी सी श्रद्धा है जिसको विशेष श्रद्धा है जिसको विशेष श्रद्धा होगी ना कीर्तन करने समय में आकर के प्रसन्न से प्रणाम करेंगे चरण छुएंगे, वाह महात्मा लोग कीर्तन करते भी आ रहे हैं बड़े प्रेम के साथ में तुम्हारे साथ में स्वर मिलाएंगे,
नाचने
भी लग जाएंगे आदर करेंगे, दूध ग्लास में भर करके गर्म गर्म ले आएंगे जी आप लोग भी खूब आदर सम्मान ऐसा भी, और कुछ लोग हैं इसका घोर विरोध भी करेंगे, किंतु सब प्राणियों के कल्याण के लिए महाप्रभु जी ने उच्च संकीर्तन ताते करीला ठीक चौर जीवे रह। महाप्रभु जी ने इस रथ यात्रा में कीर्तन को ही प्रधान बनाया, कोई सुने न सुने कैसा भी है श्रद्धालु है या श्रद्धालु है कोई भी है अंततः कीर्तन की ध्वनि जाएगी कि नहीं, इसलिए हमारे गोस्वामी ने जो पथ अनुसरण किया हम उसमें चले समझने की चेष्टा भी करें। तो महाप्रभु जी की भावना की साधारण से साधारण व्यक्ति भी श्रद्धालु से लेकर और उन्नतम अधिकारी जैसे कि ये बतला रहे हैं अभी ये उन्नतम अधिकारी के लिए अभी तक जो संकीर्तन हुआ था वो किसके लिए साधारण की एक प्राचीन है साधारण लोगों संगे करे नाम संकीर्तन बहिरंग संगे करे नाम संकीर्तन अंतरंग लैया करे ठीक है তাহলে যা আছে তো ভক্ত সঙ্গে মানে সাধারণ ভক্ত সঙ্গে করে আচ্ছা বাদ করার চাইছো তো ইস তরহ সে করেন উন্নত অধিকারী কে লিয়ে বর্ণন কর রহে হ্যাঁ যে পূর্বে জৈসে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ জৈসে গোপিয়া कृष्ण का दर्शन हमको मिला उसमें हमने बतलाया श्रीमद्भागवत कितने एकासी या तिरासी
बिरासी
बिरासी और तिरासी में
बिरासी में ही पूरी क्षेत्र में इक्यासी
तो उसमें मिलन के संबंध में बतलाया। अब वो अब महाप्रभु के अंदर में हृदय में ये क्या भावना, ये रथ यात्रा का प्रधान उद्देश्य ये वर्णन करते हैं। जगन्नाथ देखी प्रभु से भाव उठी लौ से भाव अविष्ट धुआं गवाई। जगन्नाथ को देख करके प्रभु के हृदय में ये भावना उठी, वो ये हमारे प्रियतम श्याम सुंदर अपने तो हैं राधा, और ये जगन्नाथ देव जी हैं, ये हैं राजेंद्रनंदन श्याम जी, और हमारी ये जितनी भी हैं ये हमारी सब सहेलियाँ, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर इत्यादि जितने भी हैं उसमें कीर्तन करने वाले और गायन और वादक और उसमें सबको देखा, जो रथ को खींच करके ला रहे हैं उनको देखा गोपियों के रूप में, और से भाव अविष्ट हैं धुआं गवाई। धुआं माने से ही तो पराना पाई
यहाँ
ये धुआ माने इसको कहते हैं ध्रुव, जैसे भजहुरे मन श्री नंदनंदना अभय चरणार बिंद, भजहुरे मन इसके बाद बोला दुर्लभ मानव अंतिम कड़ी श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दर्शन पूजन सखिया आत्मनिवेदन गोविंद दासय मीरा भजहुरे मन श्रीनंदन उसी को बीच बीच में एक एक पद होता जाएगा फिर उसको दोहराया जाएगा। ऐसे ही सही तो पराना उसमें बड़े सूर ताल लय से ये गा रहे हैं, हम लोग खोलते इसका सूर ताल लय मान वो नहीं आता, लोग गाने की चेष्टा भी करते हैं इसको किंतु नहीं जाता। जैसे राधे जय जय मां कितना सुंदर सुर से स्वरूप, ये सब दामोदर इत्यादि संस्कृत के ये सब गान करते हैं, हम लोग धारणा नहीं कर सकते। अभी भी कभी ध्रुपद सुनता है ना, कभी वृंदावन में जाते हैं अच्छे अच्छे लोग गाए सब साज लेकर के बैठ जाते हैं, ऐसा से मन को मुग्ध कर देते हैं। तो कृष्ण के समय में या महाप्रभु के जो सुंदर सुंदर गंधर्व जैसे भी ये लोग गायक हैं, कैसा सुंदर गायन करते हैं। विशेष करके हम लोगों ने देखा है इसमें वो पुस्तक है ना कौन सी जिसमें नरोत्तम ठाकुर भक्ति भक्ति रत्नाकर उसमें कितना सूर ताल लय मान मृदंग का अलग से वीणा का अलग से ये सब चीजों का ये सब किया है। इस तरह से भावाविष्ट यहाँ धुआं गवाई जाओ गोविंद ये भी दिए हैं, ये सब लोग सब प्रकार से योग्य थे, क्या कीर्तन क्या संगीत क्या माने सब कोई भी शास्त्र बाकी नहीं था। जैसे कृष्ण थे ना 64 कला उनके भक्त लोग भी 64 कला पाए, रसोई बनाने में सिद्ध हुआ गवाई अवश्य से राधा कृष्ण करे निवेदन अवशेष अवश्य अंत में अंत में राधा जी कृष्ण के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा जी हमको भूल गई, तुम लोग ये समझती हो कि मैं तुम्हें संपूर्ण रूप से भूल गया, क्योंकि इतने वर्षों तक मैंने कोई सूझबूझ तुम्हारी नहीं ली, मेरा जैसा और कोई कृतज्ञ विश्व में नहीं है, ऐसा समझ रहे हैं? मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। तो फिर राधा जी निवेदन उनको करता है, कैसे उनके बातचीत करने का ढंग है इसमें देखिए। तो राधा जी कह रही हैं,
आपने 16,000 मुनियों का विवाह करके अब हमारे विरह को भूल जाएगा ना, हमारे विरह को विस्मृत होने के लिए आपने विवाह करके अब महाप्रेमी भव से अब आप महाप्रेमी बन गए, अतः आप हमें क्यों नहीं भूलेंगे, देश पर रोटियाँ बने।
तो राधा जी कह रही हैं सही तुम्हें उसी अर्थ उसका अर्थ दे रहे हैं साधारण कौमार हर से तुम्हें से आमी से नौ संगम मैं भी वही हूं और तुम भी वही क्या है, मैं भी वही राधा हूं
आप भी वही
वही कृष्ण है, ब्रजविलास यहां पर नहीं आए, वही कृष्ण हो, मैं भी वही राधा हूँ। और जैसे ब्रज में हमारा नवीन प्रतिदिन नए नए संग होते थे, कभी भी राधा जी ने या कृष्ण ने या गोपियों ने नहीं ये समझा आज हम दूसरी बार मिल रहे हैं कि तीसरी बार मिल रहे हैं चौथी बार मिल रहे हैं, ये कभी नहीं सोचा, आज पहली बार ही हम उनका प्रतिदिन का आज पहली बार हम कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं, आज पहली बार हम उनसे मिल रहे हैं, गोपियाँ भी ऐसे सोच रही हैं और कृष्ण भी ऐसे ही सोचते हैं, आज पहली बार पूछते हैं ये तुम कौन हो, प्रश्न करते हैं कृष्ण तुम कौन हो, तो ये गोपियाँ क्या करती हैं, तुम इतना भी नहीं जानते कि तुम कौन हो, आप हमें नहीं जानते हैं, इस तरह से मालूम होता है जैसे वो कभी ये नहीं जानते कि पुरानी हमारी कोई मित्रता है सख्य भाव है एकदम नए मिलने में भी, हमारे गोस्वामी ने भी ऐसा ही प्रथम मिलन भी तो भास 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 का इत्यादि, प्रथम मिलन भी तो भास श्वास भाष पहले भी इसमें भी स्मरगृह अभिशंतिम धाम में तो धाम उदम पहला मिलन उनका, सब जगह में भी यही दिख रहा है पहला मिलन उनका, श्रीमद् भागवत में भी गोपी गीत में हम देखते हैं पहला उनका मिलन पूर्वरा कृष्ण, अभी मिले ही नहीं उनसे, मिलने की तो बात क्या मिले ही नहीं है, यही प्रेम का ही। तथापि हमार मौन हरे वृंदावन, हम वही हैं आप भी वही हैं दोनों का मिलन भी वही है, किंतु तथापि हमारा मन ये चाहता है कि हम दोनों वृंदावन में ही मिले, यहाँ नहीं, यहाँ पर संतुष्ट हम नहीं हो पा रहे, वृंदावन उदय कराओ आपन चरण, अपने चरणों को वृंदावन में उदित कराए, माने क्या आप वृंदावन में चले, हम वहाँ पर रहेंगे आप भी वहाँ पर चलें और पहले जैसे रहते थे वैसे रहें, क्या माने क्या, नंद बाबा के घर में रहें, रोज गायों को चराने के लिए चले, रोज गोवर्धन गिरिराज में भांडीर वन में और जितने वन में हम लोग मिले
संतोष,
यहाँ लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि तहाँ पुष्पारण्य भृंग पिकनाद सुनी, यहाँ पर लोकारण्य, लोकारण्य माने क्या, अरण्य माने के वृक्ष जैसे कि होते हैं ना, घने वृक्ष होते हैं पर्वत पहाड़ों में जंगलों में, ऐसे यहाँ लोग ऐसे ठसा ठस यहाँ पर रथ यात्रा में लगे हुए हैं,
लोगों का समुदाय,
इसलिए यहाँ लोकारण्य और हाथी घोड़ा रथ ध्वनि है। वृंदावन में जब कृष्ण का रास इत्यादि हुआ तो कितने हाथियों का उल्लेख मिलता है, या घोड़े हिंग हिंग आ रहे हैं, गधे रेख रहे हैं, कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं, वहां पर मोर नाच रहे हैं, कोयल उहक रही है, पपीहे बोल रहे हैं, सुख पक्षी सुख और सारी बड़ी मीठी मीठी में राधा कृष्ण के गुणों का दान कर रहे हैं बस यही। यहाँ पर हाथी चिंघाड़ रहे हैं, जैसे महाभारत युद्ध में, महाभारत में सुना होगा ना कैसे हाथी चिंघाड़ते हैं, और घोड़े और रथ के ध्वनि, और यहाँ पर लोकारण्य के बदले में कैसा है, पुष्पा पुष्पया भृंग पी कनाद सुनी, भृंगों की झंका और पी की रसाल वाणी, मयूर का मनोहर नृत्य, सारी और सुख का संवाद यहाँ पर सुनते। सुख सारी का संवाद माने हमारे कृष्ण बड़े सुंदर हैं ये कहता है सुख, तो सारी कहती है कि जब तक वो हमारे हमारी राधा जी उनके बाएं तरफ में खड़ी हैं तभी तक वो सुंदर है, नहीं तो सुंदर नहीं है।
बोले हमारे कृष्ण मदन मोहन सारी बोले हमारा था बामे ये तो करने ले सुधी मदन
बस सुन महाप्रभु जी सुन रहे हैं और इन दोनों में बातें चल रही हैं, महाप्रभु एकदम आविष्ट हो गए वृंदावन की ये बात।
बोले हमारे कृष्ण गिरिधर छिले सारी बोले हमारा था शक्ति संचारी नहीं पार गए थे।
यहाँ राजवेश संगे सब क्षत्रिय बा रथ यात्रा प्रसंग में ये बदला कि द्वारका में या कोई क्षेत्र में जितने वहाँ पर सम्मिलित हुए हैं यहाँ पर लोगों का सब जो भीड़ है लोगों की वो राजवेश कृष्ण का राजवेश और उनसे मिलने जो आ रहे हैं वो सभी राजवेश में सभी क्षत्रिय कृष्ण भी क्षत्रिय सबे संगे सबे सब क्षत्रिय सभी क्षत्रिय कौन क्षत्रिय जितने भी जदुवंशी हैं वो सब क्षत्रिय अर्जुन पांडव कौरव वो सब क्षत्रिय जहाँ जहाँ उनके संबंधी हैं सब क्षत्रिय वेश यहाँ गोपवेश संगे मुरली बा और यहाँ पर क्या है आपका गोपवेश है साथ साथ में मुरली बाधना वहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म आपके हथियार हैं बड़े बड़े सुंदर सोने के मुकुट हैं और यहाँ पर ये सब नहीं ब्रजे तुम्हार संगे जयी सुख आस्वादन से सुख समुद्रे यहाँ नहीं एक काम ब्रज में तुम्हारे साथ रहने से जो जिस सुख का हम आस्वादन करती हैं या आप करते हैं अपने लिए अपना तो ये छिपा करके कह रहे हैं माने आपको जो सुख मिलेगा वृंदावन जो मिलता है यहाँ उसका एक कण भी
नहीं मिलेगा
सुख समुद्र यहाँ नहीं एक कण वहाँ है वृंदावन में सुख समुद्र भक्ति रसामृत सेवा रसामृत सिंधु प्रेम रसामृत सिंधु है और यहाँ पर वो भी है समुद्र मान्य के तो वो खारा खारा पानी अमृत नहीं अमल या पुनः लीला कर वृंदावन बने तबे हमारे मनोवांछा है तो पुराने भगवती आचि जैसी राधिका बचन पूर्व जा सूत्र मध्य करिया वर्णन जैसे तुम अब फिर वहां पर वृंदावन में चलो और तबे हमार मनोवांछा है तो पूर्ण हमारी मनोवांछा वहीं पर पूर्ण होगी भागवत जैसे राधिका जी ने जैसे वहां पर कहा था राधिका जी का वचन क्या है राधिका जी का वचन आप उसी का चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट होकर के उसका श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं तबे से ही भावावेश प्रभु पढ़े आर श्लोक वो श्लोक सब पढ़ रहे हैं और उसके जो सहायक श्लोक हैं राय वो हैं स्वरूप दामोदर कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया है और उनकी भावों की पुष्टि कर रहे हैं से सब श्लोक के अर्थ नहीं बुझे लोग उन सब श्लोकों का अर्थ जो महाप्रभु जी कर रहे हैं अलंकार कौस्तुभ से या और सब जगहों से भागवत से कर रहे हैं कोई नहीं समझता स्वरूप गोसाई जाने ना करे अर्थता अर्थ तो जानते हैं किंतु अर्थ नहीं करते हैं हट्टगोल में कौन सुनेगा। श्री रूप गोस्वामी कैलो से अर्थ प्रचार, रूप गोस्वामी ने उस अर्थ को जगत में प्रकाश किया। स्वरूप संग आर अर्थ करे आस्वादन, नित्य मध्य से श्लोक करे न पठन। स्वरूप संग में चैतन्य महाप्रभु जी उनके साथ में उन अर्थों का साधन कैसे करते हैं, वो बोलते हैं, ये भी बोलते हैं श्लोक, वो भी श्लोक बोल रहे हैं और उसका भाव आस्वादन करते हैं। नित्य मध्य से श्लोक करे न पठन, महाप्रभु नित्य करते हुए इन श्लोक का बार बार पुनः पुनः पाठ करते हैं। आहुष्यते नलिननाभपदारविन्दं योगेश्वरैरिति विचिन्तमबाधबोधय संसारकूपपतितो तरणावलम्ब्यं गेहं जुषामपि मनस्सुधियात् सदा नः। साधारण रूप में तो हमने कल इस या परसों इसकी व्याख्या की थी। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु जी ने और स्वरूप दामोदर ने जैसे इस श्लोक का अर्थ साधन किया इसको बतला, इसी का नाम है व्याख्या। इन्होंने तो बंगला भाषा में प्यारों में इसकी व्याख्या की है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि ने संस्कृत में ही उन लोगों का टीका इत्यादि के माध्यम से रसा साधन। विशेष करके ये भाष्य करने में और टीका करने में सिद्धस्त है विश्वनाथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हमारे रूप गोस्वामी के, सनात रघुनाथ गोस्वामी के समस्त ग्रंथों का इन्होंने इसका किया है। मंगल का कृष्ण अमृत का किया, बहुत